दिन भर 11 फरवरी रविवार, मैं हूं आदर्श राठौर। दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान की जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता आसमा जहांगीर का 66 साल की उम्र में निधन।
मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना बड़ा नुकसान है पर्सनली और पाकिस्तान के लिए, उनकी नजीर नहीं मिलेगी।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हटाए गए अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फॉर्मूला सुझाने वाले मौलाना सलमान हुसैनी नदवी।
उनसे ये पूछा कि आपने ये जो स्टैंड लिया है, ये स्टैंड बोर्ड के मौकफ के खिलाफ है, उस स्टैंड के खिलाफ आप बाहर जा रहे हैं जबकि आपने उस स्टैंड को इतने सालों में कभी यहाँ डिस्कस नहीं किया।
जम्मू में आर्मी कैंप में घुसे चरमपंथियों के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी है अभियान। खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्षा और जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता आसमा जहांगीर का 66 साल की उम्र में लाहौर में निधन हो गया है। बीबीसी से बात करते हुए मुंजे जहांगीर ने अपनी मां की मृत्यु की पुष्टि की। उनका कहना था कि उनके भाई ने उन्हें इस खबर के बारे में बताया है। रिपोर्टों के मुताबिक आसमा जहांगीर की तबीयत रविवार को ही अचानक खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मानवाधिकार आयोग की पूर्व प्रमुख आसमा जहांगीर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला वकील थी। पाकिस्तान की न्यायपालिका में सुधार की दिशा में आसमा जहांगीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की अपनी 4 दिवसीय यात्रा में आज दुबई पहुंचे। दुबई में उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत की, जहां उन्होंने भारत के विकास और विश्व पटल पर भारत के स्थान की बात की। इसके बाद वो शाम को ओमान पहुंचे, जहां उन्होंने ओमान के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिप्टी प्रधानमंत्री सैयद फहद बिन महमूद अल सईद से मुलाकात की। मोदी की ये पहली ओमान यात्रा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश किसी भी प्रकार के हमले से खुद की रक्षा कर सकता है। शनिवार को इसराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। इसराइल का कहना था कि सीरिया की ओर से एक ईरानी ड्रोन इसराइल की सीमा में आया था। एक कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू ने अपने पड़ोसी मुल्कों की ओर इशारा करते हुए कहा कि किसी भी तरह के हमले का उचित जवाब दिया जाएगा।
כוחות איראן וסוריה, העברנו בצורה חד משמעית לכולם, שכללי הפעולה שלנו לא השתנו במאומה.
कल हमने ईरान और सीरिया के सैनिक ठिकानों पर हमले किए। हमने सभी को स्पष्ट कर दिया कि हमारा रवैया किसी के प्रति बदला नहीं है। कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। यही हमारी नीति रही है और आगे भी हमारी नीति यही रहेगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि उनका देश परमाणु समझौते को लेकर हुए समझौते का पालन करेगा, बशर्ते कि अमेरिका और विश्व की अन्य शक्तियां भी ऐसा करना जारी रखें। ईरान की इस्लामी क्रांति के वर्षगांठ के मौके पर उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने इस समझौते को रद्द किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। अमेरिका ने कई बार अपनी हर संभव कोशिश की कि वो इस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को रद्द करा सके। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि ईरान अपने वायदों को तब तक पूरा करता रहेगा जब तक दूसरे मुल्क अपने किए वायदे निभाते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने इस समझौते से बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्हें जल्द ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान परमाणु समझौते के खिलाफ हैं और पहले ही कह चुके हैं कि अगर बड़े बदलाव न किए गए तो अमरीका इस समझौते का पालन नहीं करेगा। रूस के मॉस्को के नज़दीक रामनेस्की में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एंटोनोव 148 नाम के इस विमान ने कजाकिस्तान से सटे रूसी सीमा के नज़दीक स्थित ओर्स्क के लिए उड़ान भरी थी। मॉस्को के दोमोदेदोव हवाई अड्डे से उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही सारातोव एयरलाइंस का ये विमान रडार से गायब हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जलता हुआ विमान आर्गुनोवा गांव के नज़दीक गिरा। इस विमान में कुल 65 यात्री थे और 6 चालक दल कर्मचारी थे। बीबीसी समाचार।
بی بی سی ہندی سیوا کی دوسری سبھا دن بھر میں آپ کا سواگت ہے۔ اس کارکرم کو آپ ریڈیو کے ساتھ ساتھ بی بی سی ہندی .com اور فیس بک پر بھی لائیو سن رہے ہیں۔ میرا نام ہے آدرش راٹھور۔ پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پورو ادھیکش اور جانی مانی مانوادھیکار کارکرتا آسما جہانگیر کا 66 سال کی عمر میں لاہور میں ندھن ہو گیا۔ پاکستان میں مانوادھیکاروں کے لیے کام کرنے والی آسما جہانگیر کو ان کا جو نام ہے پوری دنیا میں ایک آئیکن کی طرح لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں موجود بی بی سی سنواداتا شمائلہ جعفری سے ہم نے بات کی، جو بتا رہی ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں۔
آسما جہانگیر کا جو دیہانت ہے اس کی خبر بالکل ایک بجلی بن کے جس طرح پورے پاکستان پہ گری، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک تھیں اور رات کو وہ ایک جو پاکستان کے لیڈنگ نیوز چینل ہے اس کے اوپر ایک ٹاک شو میں بیٹھی ہوئی تھی رات کو 9 بجے تک، اور وہ بالکل جو تھیں وہ ٹھیک تھیں اور صحیح لگ رہی تھیں۔ تو آج جو ہے وہ صبح بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایک کولیگ جو تھے ان سے فون پہ بات کر رہی تھیں 12 بجے کے قریب، اور فون پہ بات کرتے کرتے جو ہے وہ ایک دم سے انہیں بہت شدید قسم کی تکلیف ہوئی اور دورہ جیسے پڑا ہے، اور پھر ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، اور جو ہاسپٹل کے سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آئیں ہوش میں نہیں تھی، جیسے کوئی بندہ فینٹ ہوتا ہے اس طرح سے تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر آئی کہ ان کا جو ہے وہ دیہانت ہو گیا ہے۔ ان کی عمر تھی تقریباً 66 برس، اور پاکستان کی وہ لیڈنگ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھیں، بہت مشہور لائر تھیں، اور ایک طرح سے ہاؤس ہولڈ نیم تھی پاکستان میں۔ جب بھی کوئی انسانی حقوق کی بات آتی تھی، ہیومن رائٹس کی، وہاں پر آسما جہانگیر کا نام جو ہے وہ لیا جاتا رہا ہے۔
جی، ان کے جانے کے بعد دکھ جتایا جا رہا ہوگا، سماج کے الگ الگ حصوں سے بھی آ رہا ہوگا اس طرح کے کوئی ریئیکشنز؟
جی، بہت ریئیکشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کا کام بہت تھا۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا پاکستان میں جو لیس پریولیجڈ جو لوگ ہیں، سیگمنٹس ہیں، جیسے مہیلائیں ہیں، بچے ہیں یا مائنورٹیز ہیں، ان کے کیسز وہ لیا کرتی تھی۔ پھر جو ڈکٹیٹرشپ ہے ان کے خلاف ان کی بہت زیادہ سٹرگل رہی پاکستان میں زندگی، انہوں نے ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائی جن کی کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، جیسے مہیلائیں، جیسے بچے، جیسے مائنورٹیز۔ انہوں نے پاکستان کا ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کی وہ کو فاؤنڈر تھی، اس کی وہ چیئر پرسن رہی۔ اس کے علاوہ ان کی جو ڈیموکریسی کے لیے پاکستان میں ایک بہت بڑی سٹرگل تھی، انہوں نے 1980s میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف جو ہے وہ بہت آواز اٹھائی تھی، اور اس کے بعد پھر جنرل پرویز مشرف نے جب 2007 میں چیف جسٹس آف پاکستان کو سیک کیا اور ایمرجنسی لگائی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ اس ساری سٹرگل کے اندر بھی جو ہے وہ فار ریسٹوریشن آف جوڈیشری وہ فور فرنٹ پہ تھی۔ ان کو تھریٹس ملتے رہے، ان کو پیٹا گیا، جیل میں ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود دیکھا یہ ہم نے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے اصولوں سے یا جو ہیومن رائٹس کے لیے یا جو بات حق کی انہیں لگتی تھی اس کے لیے کبھی بھی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی تھی۔ اور خاص طور پہ جو پاکستان ملٹری کا جو پالیٹکس میں رول ہے وہ اس کی بہت ووکل کرٹک تھی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے اپوننٹس بھی جو ہیں وہ آج ان کی بریوری کو اور ان کی کریج کو یاد کر رہے ہیں اور ان کو اکنالج کر رہے ہیں اور اس کے اوپر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔
پاکستان کے جانے مانے ساماجک کارکرتا راشد رحمان، جو کہ آسما جہانگیر کے ساتھ کام کرتے رہے تھے، ان سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی اور پوچھا کہ آسما جہانگیر کے ایک دم ایسے چلے جانے سے پاکستان میں مانوادھیکار اور جو سدھار آندولن چل رہے ہیں، جو کہ ان کی اگوائی میں چل رہے تھے، ان پر کتنا اثر پڑے گا۔
میں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنا بڑا نقصان ہے پرسنلی اور پاکستان کے لیے۔ ان کی نظیر نہیں ملے گی اس کام میں جو وہ لوگوں کے حقوق اور خاص طور جن کی آواز نہیں ہے یا دبائی جاتی ہے، ساری زندگی انہوں نے جو جد و جہد کی کورٹس کے اندر، سڑکوں پر، عورتوں کے لیے، غریبوں کے لیے، اسیروں کے لیے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن انہوں نے بنایا جو ایک بہت ہی فعال اور کریڈبل ادارہ ہے پاکستان کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، نقصان تو اتنا بڑا ہے کہ میرا خیال ہے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے جیسا فائٹر ہیومن رائٹس اور جسٹس کے لیے پاکستان میں نہیں ہے، پتہ نہیں کبھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔
جو سب سے بڑی ان کی اچیومنٹس تھی جو کہ انہوں نے لوگوں کے لیے کی، ان کو کیا مانا جائے؟ بہت کام کیے ہیں، لیکن اگر جو کچھ ایک سب سے بڑی باتوں کو اگر ہم بتانا چاہیں۔
میرا خیال سے سب سے بڑا کام، اور وہ چاہے جسٹس کے حوالے سے ہو یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو، وہ یہی تھا، وہ اسی طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ بے آواز کی آواز بنی وہ، اور ان کے لیے ساری عمر جد و جہد کرتی رہیں۔
ان کے چلے جانے سے اچانک اس طرح سے جو ایک خالی جگہ بن گئی ہے کیونکہ
ویکیوم ہو گیا ہے, لیکن اگر ہمیں ان کی قدر ہے ان کی زندگی کی, ان کی جد و جہد کی, تو ہمیں ان کی لیگسی جو ہے اس کو آگے لے کر جانا ہے. اس چیز کو ختم نہیں ہونے دینا. ابھی بے آواز کو انصاف نہیں ملا پاکستان میں, اور یہ جد و جہد جو ہے اگر ہم جاری اور ساری رکھیں اسی طرح جیسے انہوں نے کی, تو یہ سب سے بڑا خراج عقیدت ہوگا ان کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے.
آسمہ جہانگیر کی شخصیت کی جھلک ان کی باتوں اور تیوروں سے ملتی تھی. سنیے, پچھلے سال بی بی سی ہندی ریڈیو سیوا کے سمپادک راجیش جوشی نے جب ان سے بات چیت کی تھی تو سیناؤں کے دھارمکی کرن پر انہوں نے کیا کہا تھا.
جب پاکستانی فوج کا اسلامائزیشن ہوا یا اس میں مذہبی ایلیمنٹ بہت زیادہ آ گئے, اس سے فرق کیا پڑا؟
80% تو ضرور ہی لوگ کہیں گے کہ اس کا بالکل قطن فائدہ نہیں ہوا, اس لیے کیونکہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو اکسایا گیا, مذہب کے نام پہ ٹیروریزم پھیلایا گیا, کے نام پہ گن رننگ ہوئی, مذہب کے نام پہ فارن افیئرز کی دھجیاں اڑی, مذہب کے نام سے فارن کنٹریز دشمن اور دوست بنتے ہیں, اور مذہب کے نام پہ لوگوں کے اوپر مسلط کیا گیا ایک ملٹری ڈکٹیٹر جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس نے صرف مذہب کے نام سے بہت سارے پیسے بنائے اور اس کے رفقا نے بہت سارے پیسے بنائے اور لوگوں کو خوب دبایا اور ان کو پریس کیا.
بارڈر کے پار سے جب آپ ہندوستان کی طرف دیکھتی ہیں, یہاں کے جو ڈیولپمنٹس ہیں, اور کیا کیا آپ کو نظر آتا ہے جو ہندوستان میں جو ڈیولپمنٹس پولیٹیکل ہو رہے ہیں؟
کروں, میں بہت عرصے سے ہندوستان آ رہی ہوں اور میں ان کی جمہوریت کی سب سے بڑی فین رہی اور کھلم کھلا رہی, مگر میں کچھ جراثیم جیسے ہوتے ہیں, جیسے ہر سوسائٹی میں ہمارے میں 101 جراثیم ہیں, وہاں پہ بھی دو جراثیم پائے جاتے تھے. ایک یہ پاکٹس میں جو موب وائلنس جو ہوتا تھا مذہب کے نام پہ, اور دوسری بات یہ تھی کہ نیشنلزم جو تھا وہ نیشنلزم کانوں سے نکل رہا تھا, اور اسی کے اوپر جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں انہوں نے اپنا بسیرا کیا. پہلے یہ تھا کہ جب موب نکلتا تھا اور جب یہ مذہب کے نام کے اوپر ایک برپا کرتے تھے مشکلات, تو جو اسٹیٹ تھی وہ سیکولرزم کے نام پہ ان کو قابو کرتی تھی, مگر اب وہ معاملہ نہیں رہا. اب وہ سیکولرزم کا نام لینا یوں ہے جیسے کہ آپ نے نیشنل انٹیگریٹی کو جو ہے وہ للکارا ہے, کیونکہ نیشنلزم جو کہ ہمیشہ سے ہندوستان میں تھا اس کو ایک ایسی ٹوسٹ دے دی ہے کہ وہ نیشنلزم سیکولر پروگریسو پالیٹکس کے لیے نہیں ہے, مگر وہ نیشنلزم صرف ایک مذہب کے رہنے والوں کے لیے بن چکا ہے.
آپ سن رہے تھے پاکستان کی جانی مانی مانواधिकार کارکرتا آسما جہانگیر کا ایک پرانا انٹرویو, جن کا آج 66 سال کی عمر میں لاہور میں نِدھن ہو گیا.
دن بھر شارٹ ویو 49, 31 اور 25 میٹر بینڈ, یعنی 5,875, 9,510, 9,540, 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو 1,413 کلو ہرٹز پر.
ایودھیا میں رام مندر نرمان کے لیے سلح کا فارمولا سجھانے والے مولانا سید سلمان حسینی ندوی کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہٹا دیا ہے. مولانا ندوی نے کچھ دن پہلے آدھیاتمک گرو شری شری روی شنکر کے ساتھ بنگلورو میں بیٹھک کے بعد ایودھیا وواد سلجھانے کے لیے ایک فارمولا دیا تھا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سدسیہ قاسم الیاس نے آج میڈیا سے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں.
ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ جو اسٹینڈ لیا ہے یہ اسٹینڈ بورڈ کے موقف کے خلاف ہے, تو آپ کو یہ اسٹینڈ رکھنے کا پبلک میں یہ اجازت کس سے ملی آپ کو, اور آپ کو معلوم ہے بورڈ کا اسٹینڈ اس کے اوپر کیا ہے؟ اس اسٹینڈ کے خلاف آپ باہر جا رہے ہیں جبکہ آپ نے اس اسٹینڈ کو اتنے سالوں میں کبھی یہاں ڈسکس نہیں کیا, اور جو یونانی اسٹینڈ ہم نے 91 میں اور 93 میں لیا تھا اس کے سگنیٹری سلمان ندوی صاحب بھی تھے, اور چونکہ سلمان ندوی صاحب نے اس یونانیمس اسٹینڈ کے خلاف جا کر بعد میں کہی ہے اور وہ آگے بڑھ گئے ہیں, اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں اپنے اسٹینڈ پہ قائم ہوں, اور انہوں نے اس ہمارے اجلاس کے بعد جا کر ٹی وی چینل کو ایک لمبا انٹرویو دیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, میں پبلکلی اس کا اظہار کروں گا اور میں مسلم پرسنل لا بورڈ سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرتا ہوں.
تو آج کیا ہوا اس پورے گھٹنا کرم پر جانکاری کے لیے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی ورشٹھ اردو پترکار معصوم مراد آبادی سے جو کہ وہیں پر موجود تھے.
असल में एक जो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी फ्राइडे की नाइट में यहाँ पर, उसमें जो जब ये मौलाना नदवी साहब, सलमान नदवी साहब तशरीफ लाए थे, तो कुछ मेंबर्स ने एग्जीक्यूटिव का ये सवाल उठाया कि इन्होंने मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू है बाबरी मस्जिद के बारे में, उसके बिल्कुल खिलाफ, उसके अगेंस्ट बयान दिया है, और ये चूंकि बोर्ड के पुराने मेंबर हैं और खुद एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हैं, इन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि इससे बोर्ड की बदनामी होगी। और बोर्ड जो है वो शुरू से ये कहता जा रहा है कि जो मस्जिद एक बार बन जाती है वो ना तो किसी को उसकी जगह दी जा सकती है, ना हदिया की जा सकती है, ना ट्रांसफर की जा सकती है। जब इनसे ये कहा गया कि साहब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैं, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है और हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। तो उन्होंने कहा कि जब आप बोर्ड के मेंबर हैं, बोर्ड की एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, तो आपको या तो इससे अलहदा होकर के ये बयान देना चाहिए था या श्री श्री से मुलाकात करके ये कहना चाहिए था। इस पर इन्होंने कोई बयान नहीं दिया और काफी देर तक वो बोलते रहे, लगभग आधे घंटे तक। और बोर्ड के दो तीन मेंबर्स ने ये कहा कि इनके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में एक कमेटी बनाई गई थी चार लोगों की, जिसने आज ये फैसला किया कि इन्होंने चूंकि अब एक नया बोर्ड बनाने का ऐलान कर दिया है और इस बोर्ड से ये अलहदगी की बात कर रहे हैं, लिहाजा इनको अलग कर दिया जाए। इस तरह से आज इनकी अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है।
क्या उन्होंने खुद भी ये ऐलान किया, मंच से ऐलान किया, या कि मैं अलग बोर्ड बनाने जा रहा हूँ, और अगर इस तरह का बोर्ड बनता है तो मतलब कितना महत्व होगा उसका?
देखिए, उन्होंने मीडिया के जरिए ये कहा था कि मैं अलग एक बोर्ड बनाऊंगा, शरीयत एप्लीकेशन बोर्ड। ये चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, लिहाजा मैं एक शरीयत एप्लीकेशन बोर्ड बनाऊंगा।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 3 दिवसीय बैठक खत्म होने के बाद जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो सुलह का फॉर्मूला सुझाया था सलमान हुसैनी नदवी ने, उन्हें बोर्ड ने हटा दिया है, उसके बारे में बता रहे थे वरिष्ठ उर्दू पत्रकार मासूम मुरादाबादी। जम्मू में आज दूसरे दिन भी चरमपंथियों के खिलाफ अभियान जारी है। इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। अभी तक सेना के 5 जवान चरमपंथियों के इस आत्मघाती हमले में मारे जा चुके हैं और जवाबी कार्रवाई में 3 चरमपंथियों के मरने की खबर है। चरमपंथियों ने शनिवार तड़के जम्मू में आर्मी कैंप पर हमला किया था। सुनिए माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
जम्मू का सुंजवा इलाका शनिवार को गोलियों और धमाकों से उस समय लरज उठा जब भारी हथियारों से लैस चरमपंथियों ने इलाके में कायम भारतीय सेना के 36 ब्रिगेड पर धावा बोला। हमले में मौतों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इतवार को सर्च अभियान और कैंप को सैनिटाइज करने के दौरान सेना के 3 और जवानों के शव मिलने के अलावा एक नागरिक का भी शव मिला है। मारे गए सेना के 5 जवानों में से 2 जवान JCO पद के हैं। शनिवार को एक JCO और एक सूबेदार की मौत हो गई थी, जबकि शनिवार को ही 2 चरमपंथियों के भी शव मिले थे। इस अभियान में अभी तक 3 चरमपंथियों को मारा गया है। मुठभेड़ में मारे गए सेना के सभी जवान जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। इन मौतों के अलावा अन्य 10 लोग घायल हैं, जिनमें एक 14 वर्ष का किशोर भी है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू में इतवार को मीडिया को जानकारी देते हुए सेना के प्रवक्ता कर्नल दविंदरा आनंद ने बताया,
सुंजवा में चल रहे सैन्य अभियान के दौरान अब तक 3 टेररिस्ट मार गिराए गए हैं। तीसरा टेररिस्ट भी पहले मारे गए 2 टेररिस्ट की तरह सेना की वर्दी में था और भारी हथियारों से लैस था। इन टेररिस्ट ने AK-56 राइफल्स, UBGL, भारी मात्रा में एम्युनिशन एवं ग्रेनेड्स मिले हैं। भारतीय सेना के कमांडो द्वारा चलाए गए सर्च अभियान के दौरान रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में 1 JCO, 2 जवान एवं 1 जवान के पिता के शव बरामद हुए हैं। ये सभी कल सुबह की प्रारंभिक मुठभेड़ में कैजुअल्टी हो गए थे।
शनिवार को चरमपंथी कैंप में JCO के कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। चरमपंथियों के हमले के बाद पूरे इलाके को कल से ही सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले रखा है। सेना को आशंका है कि अभी भी मिलिट्री स्टेशन में कोई चरमपंथी छुपा हो सकता है, जिसके कारण ऑपरेशन को अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। सेना ने चरमपंथियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए विशेष पारा कमांडोज को तलब किया था, जिन्होंने स्टेशन में छुपे चरमपंथियों के खिलाफ अभियान चलाया। सेना ने मारे गए चरमपंथियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। सेना ने शनिवार को बताया था कि चरमपंथियों से जिस तरह का मवाद और हथियार बरामद हुए हैं उससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि ये चरमपंथी जैश मोहम्मद संगठन से हैं। खुफिया एजेंसियों को इस तरह के हमले की आशंका पहले से थी। खबरों के अनुसार नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या NIA की एक टीम सुंजवा पहुंच गई है जहां वो कैंप पर हुए चरमपंथी हमले का जायजा ले रही है। गौरतलब है कि सुजमा के कैंप पर वर्ष 2003 में भी चरमपंथियों ने हमला किया था जिस हमले में सेना के 12 लोग मारे गए थे। वर्ष 2018 में जम्मू में चरमपंथियों का यह पहला हमला है। बीते महीनों में भी जैश ने कश्मीर घाटी में 3 बड़े फिदायीन हमले अंजाम दिए जिन हमलों में करीब 11 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
कुछ देर पहले मैंने रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर से बात की और पूछा कि पिछले दिनों इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं जिनमें सुरक्षा बलों के कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए?
और अभी जो जम्मू में हुआ है घटना, जो भी हमारे पास खबर आ रहा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने जो पेरीमीटर होता है कैंप के चारों ओर, वहां से उन्होंने प्रवेश किया है। शायद जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस पेरीमीटर में कमी थी और किस प्रकार से वो अंदर आ पाए, क्योंकि हमारे आर्मी के कैंप भी ऐसे ऐसे जगह में होते हैं जहां पे पेरीमीटर सिक्योरिटी एक प्रकार का अपनी जटिलता उसमें पैदा होता है। तो इस कैंप के बारे में जांच के बाद ही पता चलेगा कि अगर पेरीमीटर डिफेंस जिसको कहते हैं वो ब्रीच हुआ या किसी और मार्ग से ये जो सुसाइड बॉम्बर्स या टेररिस्ट से कि वो अंदर आ पाए।
और भी अगर हम घटनाक्रम देखें तो ये जो एक रणनीति है कि सैन्य बलों के कैंपों को निशाना बनाया जाए, एक इस तरह की घटनाएं हाल फिलहाल में बढ़ी है पिछले कुछ सालों में।
बिल्कुल, अभी जो नक्शा बन रहा है उससे ये इस प्रकार से जाहिर है कि चाहे ये जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर या उनके जो समर्थक है, ये खास फौजियों के जो परिवार है उनको निशाना बना रहे हैं, बच्चों को निशाना बना रहे हैं। और हाल में हमने ये भी देखा कि अस्पताल के ऊपर हमला हुआ था जहाँ से उन्होंने अपने एक टेररिस्ट को भी छुड़वा के उसको आजाद भी कर दिया था। तो ये सब मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी टारगेटिंग जो हो रहा है, ये खास सॉफ्ट टारगेट्स को चुन रहे हैं और ये भी शायद इन गुटों का जो सोच है और उनकी जो एक प्रकार से जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, इसके लिए एक परिवर्तन आ रहा है क्योंकि फौज के ऊपर से दबाव इनके ऊपर बढ़ रहा है, तो इन्होंने सॉफ्ट टारगेट को इस प्रकार से चुनने की कोशिश किया है। और ये मेरे ख्याल से अभी आने वाले कुछ महीनों में ऐसे ही शायद एक पैटर्न होगा, क्योंकि जितने भी संकेत आ रहे हैं उससे शायद निष्कर्ष यही है ये जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रहा है।
ये थे रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित करते हुए कहा, सभी तरह के विकास के बावजूद अभी भी गरीबी और कुपोषण खत्म नहीं हो सका है। क्या कहा और क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं।
विकास का एक पहलू यह भी है कि पाषाण युग से औद्योगिक क्रांति के सफर में हजारों लाखों साल गुजर गए, उसके बाद संचार क्रांति तक सिर्फ 200 वर्षों का समय लगा और वहां से डिजिटल क्रांति तक का फासला कुछ ही सालों में तय हो गया। अब टेक्नोलॉजी विचार की गति से बदल रही है, यानी एट द स्पीड ऑफ थॉट, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी नहीं रही, आविष्कार आवश्यकताओं को जन्म दे रहे हैं।
दुबई में भारतीयों को संबोधित करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान जा रहे हैं और वहां पर भी वो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल रही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं। 6 फरवरी से परीक्षा शुरू हुई है और बताया जा रहा है कि अब तक 10 लाख के करीब छात्र परीक्षा छोड़ चुके हैं। सरकार इसके लिए नकल विहीन परीक्षा के अपने दावे को कारण बता रही है, तो जानकारों का कहना है कि कारण और भी हैं और पहले भी छात्र बोर्ड की परीक्षाएं छोड़ते रहे हैं। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
बोर्ड परीक्षाओं को शुरू हुए अभी 5 दिन ही हुए हैं और करीब 10% से ज़्यादा छात्रों ने अभी ही परीक्षा छोड़ दी है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही केंद्रों में कड़ी निगरानी रखने और CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए थे ताकि छात्र नकल न करने पाएं। बताया जा रहा है कि इसी सख्ती की वजह से तमाम छात्र परीक्षा न देने में ही भलाई समझ रहे हैं। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की तल्ख सच्चाई भी सामने आ रही है और मजाक भी उड़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी इस पर तंज कसने से नहीं चूके।
आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कहा यार नकल विहीन परीक्षा करो, 10 लाख छात्रों ने परीक्षा ही छोड़ दी और 10 लाख तो अभी तक है, पता नहीं आगे क्या होगा। यानी परीक्षा का ऐसा होबा खड़ा कर दिया है। मेरा तो ये मानना है कि हम लोग आगे से ये भी व्यवस्था करेंगे। इसको हम देख रहे हैं, यहीं पर 10 लाख जो बच्चे छोड़ रहे हैं यहीं पर नहीं छोड़ेंगे। कैसे परीक्षा और सरल हो, इस दिशा में भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि सख्ती की वजह से छात्रों में परीक्षा का खौफ है। परीक्षा केंद्रों पर शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के अलावा खुद शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी जांच करने पहुंच रहे हैं। पिछले साल बोर्ड की परीक्षाएं जब हुई थी तब बीजेपी सरकार सत्ता में आई ही थी और उस समय भी 5 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ी थी, जबकि उससे पहले 6 लाख से ज्यादा छात्र नामांकन के बावजूद परीक्षा देने नहीं आए। जानकारों का कहना है कि छात्र सिर्फ नकल पर सख्ती की वजह से परीक्षा छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और MLC डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा कहते हैं,
बच्चे तो इस तरह के हैं कि जो दो दो तीन तीन जगह अपने एनरोल कराए रखते हैं तो वो एक जगह परीक्षा देते हैं, बाकी जगह छोड़ देते हैं और फिर कुछ गिनती उनकी आती है जो तैयार ही नहीं है परीक्षा के लिए। तीसरी गिनती उनकी है जो वित्तहीन विद्यालयों में एनरोल हुए हैं और उन्होंने मात्र रजिस्ट्रेशन कराया, कभी पढ़ा नहीं और उन्होंने ठेका लिया था कि हम नकल करके पास करा देंगे। पिछले बार भी छोड़ते रहे हैं। जो रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हैं, रेगुलर, कोई नहीं छोड़ रहे हैं।
ओम प्रकाश शर्मा कहते हैं कि नकल माफिया वित्त विहीन स्कूलों में सक्रिय हैं और ज्यादातर प्राइवेट फॉर्म भरने वाले छात्र ही यहाँ एडमिशन लेते हैं। उनके मुताबिक परीक्षा छोड़ने वाले छात्र भी वही हैं। जहाँ तक नकल पर सख्ती की बात है तो ओम प्रकाश शर्मा का दावा है कि नकल अभी भी हो रही है।
देखिए, जो ठेके पर नकल करा रहे माफिया, वो आज भी कामयाबी के साथ नकल करा रहे हैं। मुझे ये जानकारी मिली है, जो वो लगा रखे कैमरे, उस कैमरे के नीचे खड़ा होता है आदमी और वो पूरी डिक्टेशन दे देता है और वहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता, कैमरे को बंद कर लेते हैं वो बिल्कुल।
ओम प्रकाश शर्मा के दावे की पुष्टि इस बात से भी होती है कि इतनी सख्ती के बावजूद अब तक बड़ी संख्या में छात्र नकल करते हुए पकड़े गए हैं। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में इस बार कुल 66 लाख छात्र पंजीकृत हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब समय है खेल समाचारों का। आदेश कुमार गुप्त हमारे साथ स्टूडियो में है। क्या कहती है खेल की दुनिया आज?
जी, आदर्श चर्चा तो आज भी कल की हार ही की है, क्योंकि जोहानिसबर्ग में जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 5 विकेट से हराया, वो थोड़ी चिंता की बात हो गई है, क्योंकि जो भारत के स्पिन गेंदबाज है यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, वो कल के मैच में काफ़ी महंगे साबित हुए और इन दोनों की बदौलत हालांकि भारत ने शुरुआती 3 एकदिवसीय मैचों में जीत हासिल कर एक तरह से अजय बढ़त हासिल की हुई थी, लेकिन अभी भी जिस तरह से सीरीज जीवंत हो गई है तो क्या इससे दक्षिण अफ्रीकी टीम को राहत की सांस मिली है? इसे लेकर जाने माने क्रिकेट समीक्षक प्रदीप बैगजीन कहते हैं,
राहत तो होगी क्योंकि आप अपने ही जर्सी पे, जहां आपका रिकॉर्ड इतना कमाल का है, आप लगातार 4 मैच और टेस्ट सीरीज पे, चलो एक हार गए लेकिन वो जीत गए थे, उसके बाद 3 वनडे हारे नहीं और बल्कि बुरी तरह से हारे, और जिस तरीके से चहल और यादव ने उन पे एक तरीके से पूरा कब्जा कर रखा उनकी बैटिंग पे और उनको खेलने नहीं दे रहे थे, तो कल की जो वो स्पेल है उन्होंने कल तोड़ा, हार का अपना जो एक सिलसिला था उसको तोड़ा, तो राहत तो बहुत भी होगी उनको।
उधर मलेशिया में आयोजित हुई एशियाई टीम चैंपियनशिप में महिला वर्ग का बैडमिंटन का खिताब जापानी टीम ने अपने नाम किया। आज फाइनल में जापान ने चीन की महिला टीम के खिलाफ शुरुआती 3 मुकाबले जीतने के साथ ही अपनी जीत सुनिश्चित कर दी। वहीं दक्षिण अफ्रीका में ही मौजूद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मेजबान दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के हाथों तीसरे और आखिरी 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ICC महिला चैंपियनशिप के मैच में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद 2-1 से ये सीरीज भारतीय महिला टीम ने अपने नाम की।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश। और अब विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्षा और जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता अस्मा जहांगीर का लाहौर में निधन हो गया है। वो 66 साल की थीं। 3 देशों की अपनी 4 दिवसीय यात्रा में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत की। इसके बाद वो शाम को ओमान पहुंचे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश किसी भी प्रकार के हमले से खुद की रक्षा कर सकता है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि उनका देश परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुए समझौते का पालन करेगा, बशर्ते कि अमरीका और विश्व की अन्य शक्तियां भी ऐसा करना जारी रखें। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया मोहम्मद शाहिद ने। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार, शुभरात्रि।